Good evening. Greetings of the peace and happiness to everybody. हमारा आज का विषय बहुत ही सुंदर है, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। इस संसार में जैसे संस्कार वाले लोग होते हैं, वैसा ही संसार इस दुनिया में होता है। सतयुग में दैवी संस्कार वाले लोग इस धरती पर रहते थे, इसलिए जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो न चाहते हुए हमारा सिर उनके सामने झुकता है, क्योंकि उन्होंने वो दिव्य गुण थे जो हमारे में नहीं है, इसलिए हम बड़े सम्मान से उनके सामने नमन करते हैं। इसका मतलब ऐसी देवी देवताएं पहले इस दुनिया में होकर गए हैं, तो जब दैवी संस्कार वाली आत्माएं धरती पर होती है तो ये संसार सतयुग कहलाता है, दैवी संसार कहलाता है। लेकिन जैसे जैसे हम पार बजाते हैं, धीरे धीरे नीचे आते हैं, आत्मा की कलाएं कम होती हैं, तो संस्कारों में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि द्वापर युग से आत्मा पर विकारों का प्रभाव रहता है, और उस विकारों के प्रभाव के कारण हमारे संस्कार भी तमोप्रधान बनते हैं। सत्वप्रधान के बजाय असुरी संस्कार होते हैं, तमोप्रधान संस्कार होते हैं। तो सतयुग त्रेतायुग में हमारे पर दिव्य गुणों का प्रभाव था और द्वापर कलयुग में विकारों का प्रभाव आत्माओं पर रहा। परिणाम स्वरूप आत्माएं कमजोर बनती गई और तमोप्रधान बनती गई। तो अभी वर्तमान समय कुछ भी हो, संस्कारों का परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन पांच विकारों का बोलबाला है। रावण को हम हर वर्ष जलाते हैं, इसका मतलब पांच विकार नर के, पांच विकार नारी के, ऐसे दस सिर वाला रावण को हम हर रोज हर वर्ष जलाते हैं। इसका मतलब विकारों का प्रभाव मनुष्य आत्माओं पर बहुत है, और उसके कारण हमें बड़ा भारी नुकसान होता है। आप कहेंगे कैसे नुकसान होता है, थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। जब हम अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ते हैं और कभी कभी कारोबार बहुत होता है तो हमारे मन में न चाहते हुए स्ट्रेसफुल सिचुएशन होने से स्ट्रेसफुल थॉट्स मन में चलते हैं, नकारात्मक संकल्प मन में चलते हैं। तो नकारात्मक संकल्पों का बहुत गहरा प्रभाव हमारे शरीर पर नकारात्मक पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य के शरीर में 75 trillion body cells are in human body. 75 trillion. And whatever the thoughts we are creating in our mind, each and every thought has deep impact on our every body cells and tissues. तो जब नेगेटिव थॉट चलता है मन में कारण अकारण, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे शरीर के टिश्यूज पर पड़ता है और उसके कारण एक नुकसान देने वाला हार्मोन्स हमारे शरीर में रिलीज होता है. उसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड. वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, दबाता है. इम्यून सिस्टम किसको कहते हैं? जो हमारे बॉडी पर बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगस का जो अटैक होता है, उसको डिफेंस करने वाली जो सिस्टम होती है उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं. लेकिन ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स होता है हमारी इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और उसके कारण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म लेती है. मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया है 80% डिसीजेस आर साइकोसोमेटिक डिसीजेस. जो पहले हमारे मन में जन्म लेते हैं बाद में तन में ट्रांसफर होते हैं 80% डिसीजेस. अभी सवाल ये उठता है परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमने सकारात्मक चिंतन करने की कला को अपनाना होगा. उसके लिए संस्कार परिवर्तन करना बहुत जरूरी है. जब सकारात्मक संकल्प हमारे मन में क्रिएट होते जाएंगे तो उसका प्रभाव हमारे बॉडी सेल्स पर सकारात्मक होगा और इसको मेडिकल साइंस में फेथ हीलिंग कहते हैं. वी कैन क्यूर आवर ओन डिसीजेस बाय आवर ओन सेल्फ बाय पॉजिटिव थिंकिंग. तो जब संस्कार हमारे सतप्रधान होते हैं तो ये कला हमारे जीवन में नेचुरल होती है. हर परिस्थिति में हमारे मन में पॉजिटिव थॉट चलते रहे, पावरफुल थॉट चलते रहे, ये कला हमें हासिल होती है. इसलिए ये जो हमारे असुरी संस्कार है उससे तन पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है नेगेटिव, और मन पर भी पड़ता है. मन में नेगेटिव संकल्प चलने से आत्मा की बहुत ऊर्जा नष्ट होती है. हमारे मन में एक मिनट में लगभग 13 से 15-16 थॉट्स चलते हैं और बहुत एनर्जी हमारी उसमें वेस्ट होती है, यूज होती है, नष्ट होती है. अगर हम अपने थॉट पैटर्न को चेक करते हैं तो हमारे मन में 4 प्रकार के संकल्प चलते हैं. सारे दिन भर में चेक करेंगे तो पहला है सकारात्मक संकल्प, पॉजिटिव संकल्प जो दिव्य गुणों से रिलेटेड हो सकते हैं. दूसरा है नकारात्मक संकल्प जो विकारों से संबंधित होते हैं, नेगेटिविटी से संबंधित होते हैं. और तीसरा है कर्म करने के लिए संकल्प. जो हम सारे दिन भर में कारोबार करते हैं उसके लिए भी संकल्प हमें चलाने पड़ते हैं. तो उस संकल्पों के द्वारा एनर्जी हम धीरे धीरे यूज करते हैं. और चौथा है व्यर्थ संकल्प चलना. किसी भी काम के लिए बार बार सोचते रहना, रिपीटेडली सोचते रहना, उसको व्यर्थ संकल्प कहते हैं. और व्यर्थ संकल्पों के द्वारा हमारी एनर्जी बहुत व्यर्थ जाती है, वेस्ट होती है। अभी संस्कार परिवर्तन करने से क्या होता है, नकारात्मक संकल्प सकारात्मक में परिवर्तन होता है और व्यर्थ संकल्प भी समर्थ में परिवर्तन होते हैं, उससे हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होने लगती है। इसलिए संस्कारों को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, वर्तमान समय जब दुनिया की बातें हमारे सामने आती हैं, ऐसा माहौल डर का है, किसी न किसी प्रकार का भय हर एक मनुष्य के मन में सदा रहता है, किसी न किसी प्रकार का। धनवान होगा तो उसको टैक्स का भय होगा, गरीब होगा तो उसको अपना कमाई का होगा संकल्प होगा, डर होगा पल पता नहीं क्या होगा। तो ये जो फियर होता है मन में, वो फियर से हमें बड़ा भारी नुकसान होता है। फियर को खत्म करना बहुत जरूरी है। फियर इज नॉट अलाउइंग अस टू बिकम द नियर एंड डियर ऑफ गॉड। तो एक बार मनोवैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, फियर का हमारे शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है इसको चेक करने के लिए एक प्रयोग उन्होंने किया। दो गोट लिए, एक गोट रखा और उसके सामने बहुत सुंदर नेचर था, और दूसरा गोट जो रखा उसके सामने शेर में पिंजरे में शेर को रखा। दोनों को बहुत अच्छा भोजन खिलाते रहे, रिच भोजन खिलाते रहे, लेकिन ये जो गोट था जिसके सामने नेचर था वो बहुत मोटा तगड़ा हो गया, और ये जो था उसके सामने शेर था, डर हमेशा बना रहता था कि ये शेर मुझे कभी भी खा सकता है, मार सकता है, उसके कारण वो बहुत दुबला रह गया। कहने का मतलब है, हमारे मन में अगर किसी भी प्रकार का भय होता है तो जो भी सिस्टम हमारे शरीर में चलती है, रेस्पायरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जितने भी सिस्टम चलती है वो लड़खड़ा जाती है। इसलिए हमें फियरलेस बनना बहुत जरूरी है, निडर बनना बहुत जरूरी है। बातें आएगी जाएगी, लेकिन संस्कारों को परिवर्तन अगर हम करते हैं तो पॉजिटिविटी हमारे जीवन में बढ़ने लगती है और हम फियरलेस बनते जाते हैं। अभी आजकल एक क्रेज दुनिया में बहुत चल रहा है, हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, प्रभावशाली हो, मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो, टावरिंग पर्सनालिटी हो, शावरिंग पर्सनालिटी हो, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हो, इंस्पायरेबल पर्सनालिटी हो। उसके लिए विभिन्न प्रकार के साधन वो इकट्ठा करता है और प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने का पूरा प्रयास करता है। अभी फिजिकली हम कितने भी हैंडसम हो, लेकिन मैग्नेटिक पर्सनालिटी को क्रिएट करने के लिए आवश्यकता है स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को मेंटेन करना। फिजिकल पर्सनालिटी प्लस स्पिरिचुअल पर्सनालिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक पर्सनालिटी। तो हमारे जीवन में हमें कुछ मूल्यों को जीवन में धारण करना होगा, तभी हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता जाता है। हम देखते हैं कुछ ऐसी महान विभूतियां इस संसार में होकर गई हैं, उनके चित्र उनके स्टैचूज हम रखते हैं ऑफिस में चौराहे पर वगैरह रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनके व्यक्तित्व से हमें कुछ प्रेरणाएं मिलती है, कुछ दिव्यताएं मिलती हैं। उसके कारण उनका चित्र हम सामने रखते हैं, क्योंकि उन्होंने दिव्यताएं थी। तो ऐसे ही अगर हमें भी अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाना है तो स्पिरिचुअल वैल्यूज को जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। मुझे एक वाक्य बहुत अच्छा लगता है, वैल्यूज के बिना मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्या बोला? वैल्यूज के बिना मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं होती है। मूल्यों के बिना मनुष्य की कोई मूल्य नहीं होती है। जितना वैल्यूज को हम अपने जीवन में धारण करते हैं उतना हमारी पर्सनालिटी वैल्यूएबल बनती है। इसलिए संस्कार परिवर्तन करने के लिए हमें वैल्यूज को जीवन में धारण करना जरूरी है, मूल्यों को जीवन में धारण करना जरूरी है। मैं 2006 में यूरोप टूर में गया था, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में फेमस साइंटिस्ट 60 थे, उनके साथ चर्चा कर रहा था। उन्होंने मुझे टॉपिक दिया था हाउ टू डेवलप द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मैंने उनको कुछ थॉट्स शेयर किया, लेकिन मेरे प्रवचन के बाद में एक व्यक्ति खड़ा होकर, साइंटिस्ट खड़ा होकर प्रश्न पूछने लगा। क्या मैं प्रश्न पूछूं? मेरा एक प्रश्न है, उसका जवाब मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया, आप दोगे? मैंने कहा बताइए अपना प्रश्न। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है। क्या है? दिन प्रतिदिन इस संसार में आध्यात्मिक संस्थाओं का नंबर बढ़ता जा रहा है एक तरफ, और दूसरे तरफ मनुष्य के चरित्र का पतन भी बढ़ता जा रहा है। उत्थान होना चाहिए लेकिन पतन हो रहा है। इसका कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जब आध्यात्मिक संस्थाएं बढ़ रही है तो मनुष्य के चरित्र का उत्थान होना चाहिए, लेकिन और गिरावट होती जा रही है। इसका कारण मैं जानना चाहता हूं। मैंने बड़ा सरल रीति से उनको जवाब दिया कि देखिए, किसी भी आप आध्यात्मिक संस्था में जाइए, आपको बहुत अच्छी बातें सिखाएंगे। कोई भी संस्था में आप जाएंगे, किसी भी सत्संग में जाएंगे, बहुत अच्छा ज्ञान आपको मिलेगा। किसी को दुख नहीं देना है, विकारों पर विजय प्राप्त करना है, अच्छा बोलना है, मीठा बोलना है, तो ये सारी बातें हर सत्संग में बताते हैं। तो ज्ञान वो हमें बताते हैं, विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए युक्तियां भी बताते हैं, लेकिन युक्तियों को जीवन में धारण करने के लिए आवश्यकता है शक्ति की। युक्ति प्लस शक्ति इज इक्वल टू विकारों से मुक्ति और दिव्य गुणों की प्राप्ति। तो शक्ति का स्रोत केवल ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में उपलब्ध है, केवल ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में उपलब्ध है। ये मैंने अच्छी तरह से अनुभव किया, क्योंकि इस संस्था में आने के पहले मैंने कोई संस्था नहीं छोड़ी जहां मैं नहीं गया। मेरा एक ही संकल्प था, एक ही इच्छा थी, इस धरती पर भगवान अगर आए होंगे तो मैं उनसे मिलना चाहता हूं। लेकिन मुझे उसमें सफलता नहीं मिली। और जब 1972 में नागपुर में मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब कोई विद्यार्थी मुझे इस विद्यालय में ले गया और मैंने इसकी एक साल तक स्टडी किया, और 1973 में पहली बार यहां माउंट आबू में आया, और उस परमपिता परमात्मा के ब्रह्मा बाबा के माध्यम से जो परमात्मा काम कर रहे हैं उस परम पिता से मेरी मुलाकात हुई, मैंने दर्शन लिए, मुलाकात की और उससे मेरा पूरा निश्चय हो गया कि ये भगवान है और ये मेरा बाप है और ये सारे संसार का क्रिएटर, डायरेक्टर, कंट्रोलर है। क्योंकि आध्यात्मिकता में आत्मा परमात्मा की बातें बढ़ा चढ़ाकर बताने की नहीं होती है, अनुभव करने की होती है। इसलिए आप महान आत्माएं, बहुत महान आत्माएं इस सभा में जो बैठी है, क्योंकि ये परमात्मा का घर है, ये कोई साधारण सत्संग नहीं है। यहाँ आने के लिए पुण्य कर्मों की पूंजी की आवश्यकता है, उस पुण्य की पूंजी ने आपको भगवान के दरवाजे पर लाया। अभी आपका काम है उनको पहचानना और उनसे अपना वर्षा लेना, क्योंकि वो हमारा बाप है, बाप से हमें वर्षा मिलता है, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, दिव्य गुणों का, शक्तियों का जो खजाना हमें मिलता है वो हमने उनसे लेना है और आपको भी वो मिलना है, ठीक है ना। तो ये बात है। अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि उस व्यक्ति, मेरे प्रश्न का जो जवाब दिया ने मैंने उनको जर्मनी में, वो साइंटिस्ट खुश हो गए। अभी जितना हम समझते हैं ना, आगे बढ़ते हैं ना, तो इस कंप्यूटर के जमाने में हर व्यक्ति का एक प्रश्न होता है, समस्या होती है कि बहुत टेंशन होता है। छोटा बच्चे से लेकर बड़े से तल तक बहुत टेंशन होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत दौड़ना पड़ता है, बहुत भागना पड़ता है। तो इस कंप्यूटर एज में स्ट्रेसफुल लाइफ अनुभव करते हैं, तो टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री लाइफ अनुभव करने के लिए हमें राजयोग का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। 1975 की बात है, इस संस्था के जो मुखिया दादी प्रकाशमणि जी थी वो वर्ल्ड टूर पर थी और यूरोप में लंदन में जब थी तो उनकी दिनचर्या सवेरे से लेकर शाम तक प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम, प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम, बहुत बिजी थी और उनकी एज भी ओल्ड एज ही थी। तो कुछ पत्रकार उनके प्रोग्राम्स को फॉलो कर रहे थे, तो जब लास्ट प्रोग्राम हो गया 7:30 बजे, तो एक पत्रकार खड़ा होकर प्रश्न पूछने लगा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? हाँ बोलिए। मैं सवेरे से लेकर आपको देख रहा हूं, प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम, 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 इतना बिजी होते हुए भी मैंने आपके चेहरे पर कोई थकावट का चिन्ह नहीं देखा। कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एवर फ्रेशनेस, एवर लाइटनेस, एवर ब्राइटनेस? क्या है इसका राज? उन्होंने इतना ही कहा, दिस इज अ मिरेकल ऑफ राजयोगा मेडिटेशन। जब वो इतने प्रभावित हो गए, इतने प्रभावित हुए, फिर उन्होंने लंदन में सेवा केंद्र पर जाके 7 दिन का कोर्स किया और 75 से अभी तक वो रेगुलर है। उनका नाम है ब्रदर नेवल। कहने का मतलब है कि अपने जीवन का आनंद अगर हमें लेना है, स्ट्रेसफुल जीवन को अनुभव करना है, तो ये मेडिटेशन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना जरूरी है और इससे ही हमारे संस्कारों का परिवर्तन होते रहता है। अभी ये मेडिटेशन हर रोज करना क्यों जरूरी है? डेली 1 घंटा 2 घंटा मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मैं रशिया गया था 2010 के आसपास, 200 युवाओं के साथ मैं मिल रहा था मास्को में। उन्होंने मुझे टॉपिक दिया, हाउ टू इंप्रूव आवर कॉन्सेंट्रेशन पावर एंड हाउ टू ओवरकम एग्जामिनेशन फियर। क्योंकि ये करंट समस्या है विद्यार्थियों की। मैंने उनको अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें बहुत अच्छी बताई, लेकिन एक बात पर मैं बार बार जोर दे रहा था कि आप कितना भी बिजी हो लेकिन राजयोग का मेडिटेशन का अभ्यास डेली आपको करना जरूरी है। प्रवचन के बाद एक व्यक्ति खड़ा हो गया, स्मार्ट स्टूडेंट्स खड़ा हो गया। प्रश्न पूछूं मैं? हाँ पूछो। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी है, मुझे कोई एग्जामिनेशन फियर भी नहीं है, मुझे राजयोग करने की कोई जरूरत नहीं है, बताओ क्यों करना जरूरी है? आप बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि राजयोग का अभ्यास करना चाहिए, टेल मी द रीजन। मैंने उनको सिंपल उदाहरण दिया, सेल फोन का मोबाइल। ये देखो दीदी के पास बहुत अच्छा मोबाइल है ना, कौन सी कंपनी का? सैमसंग का है ना। हाँ हाँ, तो सेल फोन जब लेते हैं हम बातें करते हैं तो धीरे धीरे बैटरी क्या होती है? डिस्चार्ज होती है। तो मोबाइल को अच्छी तरह से चलाने के लिए मोबाइल की बैटरी को डेली चार्ज करना जरूरी है। हाँ या ना बोलिए, बोलिए। हाँ, अगर मान लीजिए आपने किसी कारण मोबाइल की बैटरी चार्ज करना भूल गए और वही मोबाइल उठा के चल पड़े ऑफिस में, घर में, कहीं पर भी, तो जब मोबाइल की बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो किसी के सामने हाथ फैलाना होगा, कैन आई बोरो योर सेल फोन प्लीज, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना है। चेहरा भी डिस्चार्ज होगा और मोबाइल की बैटरी भी डिस्चार्ज होगी भाई, है ना भाई। तो ऐसे हमारा शरीर एक सेलफोन के समान है और आत्मा उसकी बैटरी है। अब कैसे इसको यूज करते हैं? तो सारे दिन भर में जो हम विभिन्न प्रकार के संकल्प क्रिएट करते हैं, हजारों संकल्प क्रिएट करते हैं, आप एक मिनट में 1516 संकल्प करते हैं तो 24 घंटे में कितने संकल्प क्रिएट करते हैं, तो डेली इतने हजारों संकल्प क्रिएट करते हैं, उसमें आउटपुट है, इनपुट है ही नहीं। क्या होगा भाई? बैंक में 10 लाख रखा है आपने, डेली कुछ ना कुछ निकालते ही जा रहे हैं, एक दिन तो जीरो हो जाना है, उसमें जमा कर ही नहीं रहे। तो उसके कारण मेंटल प्रॉब्लम आज दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जीवन को अच्छी तरह से चलाने के लिए आत्मा की बैटरी को चार्ज करना बहुत जरूरी है, और चार्ज करने के लिए जो परमात्मा आध्यात्मिक शक्तियों के स्रोत हैं, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी हैं, उनके साथ कनेक्शन जोड़ना होगा, तभी शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू होगा और आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी तो चेहरा भी आपका खिल जाएगा। सुंदर चेहरा भगवान ने दिया है, किस लिए दिया है भाई? एक स्लोगन लिखो, बड़ा प्यारा स्लोगन है, लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। कितना भी सुंदर चेहरा है उस पर मुस्कुराहट नहीं है ना, कोई देखना नहीं चाहता है। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। सत्ज्ञान मिल गया, सुख मिल गया। तो चेहरा हमारा हमेशा खुशनुमा चेहरा हो। बगीचे में आप जाएंगे तो खिला हुआ फूल आपको अच्छा लगता है। ऐसी ये रूहे गुलाबों का बगीचा है। परमात्मा हर रोज ज्ञान और योग से इस बगीचे को सींचते हैं, तो बागवान परमात्मा क्या चाहते हैं? मेरे बगीचे का हर एक रूहे गुलाब बहुत खिला हुआ हो। वो भाई मेरा फोटो ले रहा है क्या? मेरे ठहरो, मेरा फोटो हम अभी लो। अरे भाई क्या बात है, फोटो लेते समय ऐसा। तो चेहरा हमारा हमेशा खिला हुआ हो, और कहावत है फेस इज द मिरर ऑफ आवर माइंड, जो मन में होता है वो चेहरे पर रिफ्लेक्ट होता है। मन खुश है तो चेहरा खुश होगा, और हमारे खुशी को छीनने के लिए तीन चोर बार बार हमारा मन का दरवाजा खटखटाते हैं। कौन से तीन चोर? चिंता, भय और बोझ। ये तीन चोर बार बार दरवाजा खटखटाते हैं और हमारी खुशी को वो छीनना चाहते हैं। लेकिन मेडिटेशन आप करेंगे, परमात्मा के साथ का अनुभव करेंगे, ये तीनों चोर ऐसे भाग जाते हैं और आप बिल्कुल तन भी खुश, मन भी खुश, चेहरा भी खुश, ऐसा जीवन आपको अनुभव होने लगेगा। चिंता मणि बाप मिल गया, चिंता काय की भाई, सारी दुनिया को बोझ ढोने वाला भगवान मेरा भी बाप हो गया तो मेरा भी बोझ ढोएगा ना। भय, सर्वशक्तिवान भगवान मेरे साथ है तो भय किस का। तो तीनों चोर भाग जाते हैं और हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहता है और चेहरा भी खिला हुआ रहता है। इसलिए संस्कारों को परिवर्तन करना है तो ये जो विकार हैं, इन विकारों को खत्म करना है, विकारों का प्रभाव को बिल्कुल जीरो करना है और दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाना है। क्योंकि इन विकारों के कारण क्या है, आत्मा में खाद हो गई है, इंप्यूरिटी हो गई है, तो इस इंप्यूरिटी को हमने खत्म करना है। सोने में जैसी अलाय होती है, उसको अलाय को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अग्नि में तपाते हैं। परिवर्तन किसी भी बात का जो होता है ना, वो अग्नि से होता है। तो यहां पे भी संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए योग अग्नि की आवश्यकता है, ये राजयोग का अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे तो योग अग्नि में विकारों की जो खाद है वो भस्म होती जाएगी और दिव्य गुणों की धारणा भी आपके जीवन में होती जाएगी और आपका जीवन बिल्कुल खुशबूदार दिव्य गुणों की सुगंध वाला बनता जाएगा, है ना। इसलिए ये राजयोग का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे राजयोग, राजयोग है क्या चीज, योग तो योग का नाम तो सुना है, राजयोग क्यों कहते भाई इसको। राजयोग इसको तीन कारणों से कहते हैं। पहला कारण है ये सभी योगों का राजा है। क्यों? क्योंकि जितने भी आज तक योग सिखाए गए हैं, कोई ना कोई महान आत्मा ने, धर्मात्मा ने, पुण्यात्मा ने, संत ने सिखाया है। ये जो योग है डायरेक्ट भगवान ने सिखाया है, इसलिए इसको योगों का राजा राजयोग कहते हैं। ये पहला कारण। दूसरा कारण, इस राजयोग के अभ्यास से हम अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनते हैं। We can become the ruler and controller of our sense organs and physical organs. हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, चाहते हैं लेकिन कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि आत्मा कमजोर हो चुकी है। तो राजयोग का अभ्यास करने से हमारे कर्मेंद्रियों पर हम राज करते हैं, स्वराज अधिकारी हम बनते हैं, ठीक है। तीसरी बात, इस राजयोग के अभ्यास से राजाई संस्कार धारण होते हैं। जब हम शरीर छोड़ते हैं, आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, कौन सा जन्म हमने लेना है, कहाँ जन्म लेना है, कौन से परिवार में जन्म लेना है, वो कौन फिक्स करता है? हमारे संस्कार। किसी का जन्म अपने झोपड़ी में होता है और किसी का जन्म महल में होता है, भाई कारण क्या है, इतनी विविधता क्यों है? संस्कार। तो संस्कारों के आधार पर हमारा भविष्य जन्म रॉयल परिवार में, नोबल परिवार में ऑटोमेटिक होता है। तो अभी हमने राजयोग के अभ्यास से अपने रॉयल संस्कारों को धारण करना है, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल होगा। बिल्कुल हमारा जन्म 100% गारंटी से बहुत रॉयल परिवार में होगा, ये पक्की बात है। और हमारे फेस के जो फीचर्स भी है वो भी बहुत रॉयल होते हैं हमारे संस्कारों के आधार से। कईयों के फीचर्स बहुत पुअर होते हैं और कईयों के बहुत रिच होते हैं। कारण क्या है? संस्कार। तो इसलिए हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, दिव्य संस्कार रॉयल संस्कारों को अपनाना है। अभी ये राजयोग क्या चीज है? ये राजयोग संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए कैसे मदद करता है, ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात, इसमें तीन बातें हैं, स्वयं को आत्मा समझना, दूसरी बात परमात्मा को यथार्थ रीति से पहचानना, और तीसरी बात है परमात्मा के साथ यथार्थ कनेक्शन जोड़ना। ये तीन बातों को अगर आप अच्छी तरह से समझते हैं तो ये राजयोग आपके लिए बहुत सरल है, बहुत सहज है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, राजयोग के अभ्यास से हम सोमान में स्थित होते हैं, और जैसे सोमान में स्थित होते हैं, आत्मा में जो असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ होता है वो जागृत होता है। आप इस बात से सहमत हैं? हर एक आत्मा में अथाह शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है, बोलो हाँ या ना, बोलो ना। हर एक में, कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जहां गुप्त रीति से शक्तियों का स्टॉक है जमा, कोई भी ऐसी आत्मा नहीं, सब में है। छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक दिन क्या हुआ, एक किसान सवेरे से लेकर शाम तक अपनी खेती में हल चला रहा है, बिल्कुल शाम के समय थक गया, और थकने के बाद वो अपने घर पहुंच जाता है, और घर पहुंचने के लिए जंगल से पार करना होता है। बड़े थका हारा चल रहा है, ऐसे थका हुआ चल रहा है बेचारा, क्योंकि सारा दिन उसने बहुत काम किया, हल चलाया। लेकिन एक घटना उसके साथ घटती है, जैसे वो धीरे धीरे चलता है, जंगल से सामने से शेर आता हुआ दिखाई देता है, और शेर की आंखें उसकी आंखों से टकराती हैं, ऐसा बिजली की तरह भागने लगता है, ऐसा भागने लगता है, जिंदगी में कभी वो भागा ही नहीं, ऐसा भागने लगता है, और अपने में बचाने में सफल भी होता है। अभी नोटवर्दी बात यह है, वो चलना भी उसके लिए मुश्किल था, इतना थका हुआ था। इतनी ऊर्जा कहां से आई भाई, इतनी शक्ति कहां से आई? वो शक्ति उसके तन में ही थी, मन में ही थी। उस घटना ने उसको जागृत किया और उसने उसका प्रयोग किया और वो अपने काम में सफल हुआ। तो ऐसे हरेक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है, आवश्यकता है उन शक्तियों को जगाने की, और वो जगाने का काम करता है राजयोग का अभ्यास, सोमान का अभ्यास। तो आप देखो, छोटी सी उदाहरण है, सिंध में जब परमात्मा ने इस संस्था का स्थापन किया तो छोटी छोटी हमारी दादियां जो है ना, छोटी छोटी बच्चियां थी, बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी, 300 बहने माताएं आई और भगवान जी चले नई दुनिया बनाने। अब इतने लोगों को लेकर नई दुनिया बनाएंगे? शिव बाबा ने क्या किया, जो कन्याएं माताएं आई थी उन्हों का जो अनेक जन्मों से गिरा हुआ सम्मान सोमान था, बाबा ने उसको ऊंचा उठाया, बस इतना ही किया। जैसे ऊंचा उठाया उनों में जो शक्तियां थी वो जागृत होने लगी, और जैसे जागृत होने लगी उनका व्यक्तित्व विकसित होने लगा, और आज देखो वो सारे विश्व में छाई हुई हैं, बड़े बड़े गुरुओं को चैलेंजेस कर रही हैं, क्रांतिकारी ला रही। हमारी दादियां देखो, सिंधी कम्युनिटी की हमारी दादियां, और 140 देशों में बाबा का प्रचार इन्होंने किया, और कितनी आत्माएं इसमें आ रही है। अभी 300-350 लोगों को लेकर नई दुनिया आप स्थापन कर सकते हैं, दिखा रहे हैं परमात्मा। ये सब चमत्कार हैं राजयोग के मेडिटेशन के द्वारा समान को जागृत करने का। कहने का मतलब है इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। इन्फेरिटी को खत्म करना है और सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है। जैसे जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते जाएंगे सारी शक्तियां आपकी जागृत होते जाएगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे। इतनी प्रतिभा मेरे में है, इतनी शक्तियां मेरे में है, कभी भी मैंने सोचा तक नहीं था। ऐसी हैरानी आपको भी होगी अपने पर। तो कहने का मतलब है इस राजयोग के द्वारा समान का अभ्यास हमने बहुत अच्छी तरह से करना है। अभी ये दो बातों को मैं क्लियर करना चाहूंगा, आत्म अभिमानी बनने कैसे और परमात्म अभिमानी कैसे बने, और उनके साथ कनेक्शन हमें कैसा जोड़ना है, ये मैं सिंपल रीति से आपको बताना चाहता हूं। हम देखते हैं सारे दिन भर में हमें अपने देह का भान रहता है। हम इस संसार में देह के रूप में नहीं आए, संसार कहते हैं नंगे आए थे और नंगे जाएंगे। नंगे शब्द का अर्थ क्या है, न अंगे, बिंदु ऊपर से आई थी, अंग हमें यहां मिला, प्रकृति ने हमारा वेलकम किया और कहा भाई ये मेरा साधन है, जाते समय मुझे वापस कर देना। तो हमारा वास्तविक रूप क्या है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है, और आत्मा जो है बहुत बिंदु स्वरूप है, निराकारी है, एकदम अदृश्य है। इन आंखों से वो दिखाई नहीं देती है, उसको देखने के लिए दिव्य नेत्र की आवश्यकता है। परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो हमें सबसे पहली सौगात क्या देते हैं, दिव्य नेत्र की, दिव्य चक्षु की देते हैं। कहते हैं ना कौरव जो है ना अंधे की औलाद, अंधे थे और पांडव सुजाग थे। अभी कौरव को आंखें नहीं थी क्या, अंधे की औलाद अंधे क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी तीसरी नेत्र बंद थी और परमात्मा ने पांडवों की तीसरी नेत्र खोली थी, उनको दिव्य नेत्र प्रदान किया था। तो हमें क्या करना है, आत्मा का अभ्यास दिव्य नेत्र के प्रयोग से करना है। अभी दिव्य नेत्र कौन सा है, शक्ति कौन सी है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूं। दो प्रश्न आपको पूछता हूं, आत्मा की आंख से ही आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा के दर्शन आप कर सकते हैं। अभी दो प्रश्न आपको पूछता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा आत्मा की आंख कौन सी है। पहला प्रश्न, आपका घर बॉम्बे में कहां है, प्रश्न पूछते ही घर दिखाई दे रहा है भाई, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलिए, दिखाई दे रहा है, आप मुझे देख रहे हैं फिर भी घर दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि घर के बारे में कुछ बातें आप बताइए, फिर आप सोच सोच के मुझे बातें बताएंगे, बहुत सुंदर घर है, 3 बेडरूम है, बहुत अच्छी ड्राइंग रूम है, बगीचा है, जो भी है। तो देखने वाली शक्ति बुद्धि रूपी नेत्र है और सोचने वाली शक्ति मन है। देखकर एक एक बात का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इस योगाभ्यास में अगर आपको मास्टरी लेनी है तो इन दो बातों को आपको समझना है, मन क्या चीज है, बुद्धि क्या चीज है, आत्मा की आंख कौन सी चीज है और मन का काम क्या है। तो बुद्धि रूपी नेत्र ये आत्मा की आंख है। तो एकांत में बैठकर हमें क्या करना है, भ्रुकुटे के बीच में मैं स्थित एक अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। भाई अजीब सितारा क्यों हूं, क्योंकि आसमान के तारे तो इन आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन ये सितारा देखने के लिए दिव्य नेत्र की आवश्यकता है, दिव्य चक्षु की आवश्यकता है, इसलिए उसको कहते हैं अजीब सितारा हूं। और गजब का सितारा क्यों हूं कहते हैं, क्योंकि छोटे सी सितारे में इतने जन्मों का पहाड़ भरा हुआ है जो कभी मिटता नहीं कभी घिसता नहीं। इसलिए हमें एकांत में बैठकर क्या करना है, अपने बुद्धि रूपी नेत्र से यहां देखना है कि मैं ये चमकता हुआ दमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। कैसा हूं, शांत स्वरूप ज्योति बिंदु हूं, शांति की किरणें चारों ओर फैल रही है, परम शांति की अनुभूति हो रही है। आत्मा के मूल गुण ओरिजिनल वैल्यूज जो है ना वो सात हैं, सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान आनंद और शक्ति, ये सात गुण आत्मा के हैं ओरिजिनल। तो उसको हमें एक एक गुण को बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है, उससे क्या होगा, आत्मा के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का पॉजिटिव एनर्जी का ओरा अनुभव होगा। आप देखेंगे जितने भी महान संत विभूतियां होती है ना, उनको एक सफेद रंग का क्राउन दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर पॉजिटिव ऊर्जा सकारात्मक संकल्पों के द्वारा इस वायुमंडल में सदा फैलाते थे, इसलिए उनको वो व्हाइट कलर का क्राउन दिखाते हैं। तो हमारा भी जैसे जैसे अभ्यास करते जाते हैं, ऐसे आत्मा का प्रकाश जो है उसका ऑरा जो है वो दिव्य और भव्य बनता जाता है। इसमें दो बातें हैं, देखने का स्वयं की आत्मा को देखने का परसेंटेज को बढ़ाना है और उसमें स्थित होने के समय को बढ़ाना है। देखो विवेकानंद जी को एक चमकता हुआ स्टार दिखाई दिया, दुनिया वाले कितने प्रभावित हो गए, कितने लिखा बड़ा ग्रंथ लिखा उसके इस बातों पर। यहां तो आत्मा का साक्षात्कार तो छोटी सी चीज है, यहां तो साक्षात आत्मा समझना है और उसका अनुभव करना है, बहुत बड़ी उपलब्धि परमात्मा हमें कराते हैं और जीवन भर उसका अभ्यास हमें करना होता है, ठीक है ना। तो कहते हैं जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया, जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। तो देह समझते ही हमें देह की दुनिया देह के पदार्थ देह के संबंध याद आता है। हमें क्या करना है, आत्मा का अभ्यास करना है, आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, तो ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आती है और परमात्मा का संग हमें अनुभव होने लगता है। तो अभी आत्मा का पाठ को बहुत अच्छा अभ्यास करना है। ब्रह्मा बाबा को 1937 में जब आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो बाबा एकांत में बैठकर आत्मा के अभ्यास को घोट घोट के रट रट के कूट कूट के पक्का करते थे और पेपर पर भी लिखते थे मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, दीवार पर भी लिखते थे। तो कोई लोग बाबा से मिलने के लिए आते थे तो कहते दादा को तो कुछ सूझता ही नहीं, सारा दिन आत्मा 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 ही रटता रहता है। लेकिन उस मेहनत के द्वारा बाबा ने नंबर वन सारे संसार में नंबर वन ले लिया। ताली तो बजाओ भाई जरा अच्छी तरह से। आपको गर्व होना चाहिए, सिंध समाज में से ब्रह्मा बाबा ने सारे विश्व में नंबर वन अपनी साधना से लिया और सतयुगी आने वाली दुनिया में कृष्ण यही बनने जा रहे हैं। आपको बहुत गर्व होना चाहिए इसका, ठीक है। तो आत्मा का अभ्यास करते रहे करते रहे करते रहे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि हमें 24 घंटे झूठा बांध देह का रहता है। मैं बहन हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन, अरे बहन हो भाई, कहां से बहन हो, कहां से भाई हूं? ऊपर से तो हम बहन के भाई के रूप में टपके, क्या बिंदु के रूप में तो आए ऊपर से, निराकारी दुनिया से निराकारी आत्मा यहां आई और पहाड़ बजाने लगी। तो हम चमकते हुए दिव्य सितारे सभी है, सबके ब्रुकुटी में चमकता हुआ स्टार दिखाई दे रहा है, सबके ब्रुकुटी में। जब बाबा आते हैं ना, परमात्मा आते हैं ना डायमंड हॉल में 25,000 की सभा में, जब दृष्टि देते हैं तो बाबा बहन भाइयों की दृष्टि नहीं देखते, सभा नहीं देखते हैं, ऐसा देखते सबकी आत्माएं चमक रही है और सबकी आत्मा से दिव्य प्रकाश की किरणें निकल रही है, ऐसा बाबा अनुभव करते हैं और उसी अनुसार मुरली चलाते हैं और वो मुरली सबको इतनी भाती है, इतना अच्छी लगती है, क्योंकि बाबा आगे बढ़ने के लिए परमात्मा उसमें डायरेक्शन देते हैं, श्रीमत देते हैं, और उसके कारण वो सबको बड़ी प्यारी लगती है। ठीक है ना? तो ऐसा आत्मा का अभ्यास हमको करना है। तो ये पहले पहली बात है। और दूसरा, भगवान परमात्मा कौन है? जब भी परमात्मा की बात आती है, कोई समस्या ऐसी आती है, जो नीचे जो भी लोग हैं वो मदद करने के लिए असमर्थ होते हैं, तो हमारा ध्यान कहां जाता है? हे ऊपर वाले, थोड़ी दया कर। डॉक्टर कहता, भाई मैंने तो काम अपना कर लिया, अभी वो जाने ऊपर वाला, अभी ऊपर वाला ऊपर ही बैठेगा क्या? वो तो हमारा बाप है ना, कभी तो वो नीचे आएगा ना कि नहीं आएगा? देखो, माँ बैठी है, बच्ची खेल रही है, बड़ी माँ देख रही है, बड़ी प्यार से देख रही है, और जैसी बच्ची का पैर नाली में गिरता है और वो चिल्लाती है, माँ दौड़ के जाती है, अरे बच्ची को उठाना है। तो भाबा हमारा पहाड़ देख रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, अच्छी तरह से अपना पहाड़ बजा रहे हैं, लेकिन हम जब परेशान होते हैं, दुख दर्द में बहुत दुखी होते हैं, और जब परमात्मा को पुकारते, हे परमात्मा इस धरती पर आओ, मुझे इन दुखों से निकालो, तो परमात्मा गीता में जो वचन कहते हैं उसी अनुसार परमात्मा धरती पर आते हैं और धरती पर आ चुके हैं। ताली तो बजाओ भाई। गीता में 9वें अध्याय में 11वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है, गीता में 9वें अध्याय में 11वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है, अवजानन्ति मा मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मजानंत मम भूत महेश्वरम, कि मैं निराकार हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ, एक साधारण वृद्ध तन का आधार लेता हूँ, उनको कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा बाबा देता हूँ और उनके द्वारा मैं सत्य ज्ञान देता हूँ, लेकिन मूढ़मती लोग जो है मुझे पहचानते नहीं हैं, और जब मैं जाता हूँ तो कहते, हे भगवान आप धरती पर आए थे लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं, और अपने भाग्य को कूटते रहते, लेकिन आप भाग्यशाली आत्माएं हैं जो पहुंचे हैं, बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो कहने का मतलब है, परमात्मा से हम मिल सकते हैं, परमात्मा का दर्शन हम कर सकते हैं, ये खुशी की बात आपको हम बता रहे हैं। अभी ऊंचा जिसका नाम, ऊंचा उसका धाम, ऊंचा उसका काम, परमात्मा। आप देखेंगे यहां जो बातें आपने सुनी होगी या सुन रहे हैं, कुछ नई नई बातें सुनते होंगे आप, कभी सुनी नहीं होगी ऐसी। क्यों भाई? अभी तक जो बातें लिखी है बताइए, शास्त्रों में वेदों में सब कुछ है, तो मनुष्यों ने लिखी है, अब परमात्मा वही बातें बताएगी तो भाई परमात्मा कौन कहेगा उसको? परमात्मा तो वो ही ज्ञान देगा ना, सत्य ज्ञान देगा, यथार्थ ज्ञान देगा, नया ज्ञान देगा, और हमारा नया जीवन बनाएगा, हमारे संस्कारों का भी नवीनीकरण करेगा, संस्कारों का भी दिव्यीकरण करेगा। तो इसलिए परमात्मा का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। किसी का नाम दुनिया में ऐसा नहीं है, किसी का सत्यम होगा, किसी का शिवम होगा, किसी का सुंदरम होगा, लेकिन एक ही साथ सत्यम शिवम सुंदरम किसी का नहीं है। सत्यम अर्थात वो सत्यता के सागर हैं, सारे संसार को सत्यता की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। हम सतयुग में त्रेता युग में सत्य स्वरूप में टिकते थे, बाद में सत्य स्वरूप में टिकना छोड़ दिया, देह समझना शुरू कर दिया, तो परमात्मा सबको सत्य स्वरूप में टिकाते हैं, सत्यता की शक्ति प्रदान करते हैं और इस धरती पर सतयुग लाते हैं। यो इसलिए कहते हैं सत्यता के सागर है, इसलिए क्रिश्चियनिटी में कहते हैं गॉड इज ट्रुथ और ट्रुथ इज गॉड, सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। शिवम अर्थात कल्याणकारी है, वो कल्याण के सागर है, सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करते हैं। हमने द्वापर युग से परमात्मा को गालियां दी, तुम कुत्ते में हो, तुम गधे में हो, तुम सुअर में हो, तुम कण कण में हो, लेकिन फिर भी वो रहम का सागर बाप हमारा कल्याण करने के लिए धरती पर आया है और हमारा कल्याण कर। भाई बजाओ ना ताली जरा। दुनिया में ऐसा कल्याण जाने वाला कोई नहीं है। कोई मेहमान आता है ना घर में, हम घुमा फिरा के दो तीन दिन के बाद पूछते, भाई टिकट कब का है जाने का बताओ, दो तीन दिन के बाद ही। अब भगवान तो इतना शुभ चिंतक है, इतना कल्याणकारी है, जो आत्मा विकारों के इसमें लतपत थी, कभी सोचा नहीं ये आत्मा गंदी है, लेकिन विकारों के इसमें कीचड़ में फंसी है, फिर भी बच्चे को गले लगाया, माँ बनकर उसको नहलाया धुलाया और इतनी पालना हमें दे रहे हैं। माँ बाप जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, फिर भी उनको पालनहार नहीं कहते हैं, भगवान को पालनहार कहते हैं। पालनहार ऐसी पालना देते हैं जो हार पहनाने के लायक पूजनीय देवता बनाते हैं, इसलिए उनको पालनहार कहलाते हैं। निस्वार्थ पालना देते हैं। दुनिया में माँ बाप बच्चे को बड़े प्यार से करते हैं, बड़े प्यार से पालना करेंगे, मेरा बच्चा बुढ़ापे में मेरी लाठी बने, स्वार्थ के बिना कोई किसी की पालना नहीं करता है। अब बाप बीमार है, खटिया पर पड़ा है, बच्चा बड़े प्यार से सेवा करता है, क्यों भाई? बाप जाएगा तो प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। बिना स्वार्थ यहां दुनिया में कोई किसी की सेवा नहीं करता है, केवल एक परमात्मा ही करते हैं, इसलिए निस्वार्थ पालना उनको कहते हैं। तो वो परमात्मा सुख के सागर है, शांति के सागर है, आनंद के सागर है, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम अर्थात वो सुंदरता के सागर है, सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेकेदार है बाबा। सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज हैं, उसको हटाने के लिए हर प्रकार का सहयोग साधना करते हैं, प्रयास करते हैं, सुंदरता का वो सागर है। एक बार क्या हुआ, विवेकानंद जी ने हंसी हंसी में कहा, ये सारी दुनिया पागल खाना है। अरे भाई, अगर आगरे का पागल खाना तो फेमस है। कहते नहीं, सारी दुनिया पागल खाना है। भाई कैसे है बताओ? कोई धन के पीछे पागल है, कोई व्यक्ति के पीछे पागल है, कोई मान प्रतिष्ठा के पीछे पागल है, कोई प्रभु के पीछे पागल है, तो सबसे इस दुनिया में महान है प्रभु के पागल प्रेमी योगी आत्माएं, क्योंकि ये पागल तो विनाशी चीजें प्राप्त करते हैं और ऐसी योगी आत्माएं अविनाशी चीजें खजाने प्राप्त करते हैं जो साथ में चलते हैं, इसलिए इस दुनिया में सबसे महान है योगी आत्माएं प्रभु के पागल प्रेमी। प्यार करना योग, ये इसी को तो योग कहते हैं, भगवान से प्यार से याद करना, इसी को तो योग कहते हैं, और है क्या योग, है ना? जैसे कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता है, शक्तियों का कलेक्शन आत्मा में आने लगता है, होने लगता है। इसलिए जैसा जैसा हम योगाभ्यास करते हैं, आत्मा में परिवर्तन आने लगता है। धीरे धीरे हमारी कमियां निकलने जाती है, विकारों के अंश वंश सब खत्म होने लगते हैं और दिव्य गुणों की भी धारणा बहुत अच्छी तरह से होने लगती है। देखो हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से गर्व है कि हमारा जन्म भारत जैसी देवभूमि में हुआ है और वह यहाँ आध्यात्मिकता की प्राप्ति पालना परमात्मा से हमें मिल रही है। तो ऐसा योगाभ्यास में हमें परमात्मा का स्वरूप देखना है, सत्यम शिवम सुंदरम। अर्जुन ने साक्षात्कार परमात्मा का हुआ ना, तो अर्जुन ने वर्णन क्या किया, परमात्मा का स्वरूप ये जो सारे दुनिया का सूर्य है उस सूर्य से कई गुना तेजोमय है, ऐसा उसने वर्णन किया। बस 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 करो, बस करो भगवान, मैं आपका स्वरूप नहीं देख सकता हूं, सहन नहीं कर सकता। अब ऐसा परमात्मा का स्वरूप हो सकता है क्या? वो हमारा बाप है क्या, उसको हम देख भी नहीं सकेंगे, इतना उनका तेजोमय स्वरूप होगा क्या? तेजोमय नहीं लेकिन शक्तिशाली जरूर है, इस सूर्य से हजारों गुना शक्तिशाली जरूर है, क्योंकि सारी दुनिया उसके मुट्ठी में है, सारी दुनिया के कारोबार चलाने वाला वो है। लोग कहते हैं ये जो झाड़ का पत्ता हिलता है ना, वो भी भगवान के इशारे से हिलता है, ये झाड़ का पत्ता नहीं लेकिन हम जो कल्प वृक्ष की आत्माओं रूपी पत्ते हैं उसके इशारे पर ही चलते हैं। परमात्मा स्पष्ट कहते हैं मैंने हरेक को अपना अपना पार्ट दिया हुआ है, जो पार्ट दिया हुआ है वो बजाते हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए आप सोचो तो सही, जिसकी सारी संसार का क्रिएटर डायरेक्टर कंट्रोलर कितनी पावरफुल हस्ती होगी। कहने का मतलब परम धाम में हमने परमात्मा का स्वरूप ऐसा शक्तिशाली देखना है। ये जो सूर्य है ना, इस सूर्य को दो कारणों से सूर्य कहते हैं। पहला कारण है ये भौतिक शक्तियों का प्रचंड स्रोत है, दूसरा कारण है जब उसका प्रकाश धरती पर पड़ता है, बारिश में कचरा गंदगी बदबू होती है, सूर्य के प्रकाश में भस्म करने की क्षमता होती है, सारी गंदगी सब भस्म हो जाती है, धरती साफ सुथरी होती है। तो ऐसे परमात्मा को भी ज्ञान सूर्य कहते हैं, वो आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर प्रचंड स्रोत है। और दूसरी विशेषता, जब योगाभ्यास हम करते हैं उनका प्रकाश आत्मा पर पड़ता है तो आत्मा में जो भी कचड़ा है, विकारों की अंश वंश जो है वो सारे भस्म हो जाते हैं और संस्कारों का परिवर्तन होता है। इसलिए योगाभ्यास में हमने उनका प्रकाश अनुभव जरूर करना है। बस बाबा को देखना है, ज्ञान सूर्य परमात्मा को देखना है, तो देखना माना उनकी शक्तियां अपनी आत्मा में भरना, ये सिद्धांत है। लॉ ऑफ कॉन्टेक्ट एनर्जी फिजिक्स में कहते हैं उस कोने में बहुत बड़ा आग जल रही है और उस कोने में आइस ब्लॉक रखा है, बड़ा आइस का गोला रखा है। जब हम आग को देखते हैं तो कॉन्टेक्ट होते ही एनर्जी आने लगती है और गर्मी का एहसास होता है, और जब आइस ब्लॉक को देखते हैं तो कांटेक्ट होते ही एनर्जी आने लगती है और ठंडास का हमें अनुभव होता है। तो ऐसे परमात्मा जो ज्ञान सूर्य हैं, शक्तियों के सागर हैं, उनको जब बुद्धि रूपी नेत्र से देखते हैं तो कांटेक्ट होते ही उनकी एनर्जी हमारे हमें आने लगती है और धीरे धीरे बैटरी चार्ज होने लगती है और जीवन का आनंद हम लेने लगते है, जीवन हमारा खुशनुमा होता है। जैसे खाना और चार घंटे सोना हर एक व्यक्ति को जरूरी है, ऐसे मेडिटेशन का अभ्यास एक दो घंटा करना डेली हर एक को जरूरी है, क्योंकि ये आत्मा का भोजन है। आत्मा का भोजन हम लेते हैं तो सारा दिन बहुत मौज मस्ती में खुशी में झूमते रहते हैं, क्योंकि शरीर की एनर्जी को मेंटेन करने के लिए बढ़िया नाश्ता बढ़िया भोजन डिनर लेते हैं, आत्मा की एनर्जी को मेंटेन करने के लिए कभी सोचते ही नहीं हम, है ना भाई। तो इसलिए राजयोग का मेडिटेशन डेली हमें उसलिए करना है, और इसका आपको टेक्निक बताता हूं। राजयोग का अभ्यास करने में सफलता प्राप्त करने के लिए टेक्निक सिंपल बताता हूं। जब आत्मा समझ के आप परमात्मा ज्ञान सूर्य को देखते हैं परम धाम में, तो बुद्धि से देखना माना मन मन मना भव का मंत्र का जाप करता रहता है, लेकिन इस ध्यान की प्रक्रिया में आपको एकाग्रता मेंटेन करना है तो उसका टेक्निक क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप ध्यान करने के लिए सामने बैठते हैं, किसी का भी ध्यान कर रहे हैं, शिव जी का, हनुमान जी का, किसी का भी कर रहे हैं, गणेश जी का, लेकिन थोड़ा समय उसमें एकाग्रता होती है, बाद में कनेक्शन टूट जाता है। अब भी टेक्निक आपको बताता हूं, टूटा हुआ कनेक्शन एक सेकंड में अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करें, एकांत में बैठकर आत्मिक स्थिति में आप स्थित हो जाइए, फिर बाद में देखो आपका बुद्धि रूपी नेत्र कहां है, परमात्मा पर नहीं कहीं और है, उसको चेक करो और उसको चेंज करो, परमात्मा पर बिठा दो, चेक इट एंड चेंज इट, पुट इट ऑन गॉड। तो जितनी चेकिंग पावर चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी उतनी एकाग्रता की शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी। ध्यान में योगाभ्यास में आपकी बहुत अच्छी सफलता आप मिलती जाएगी और ये बहुत सहज आपको अनुभव होता जाएगा। इसलिए ये अभ्यास की बात है, क्योंकि हमारा मन और बुद्धि कितने सालों से द्वापर युग से इधर उधर आवारा की तरफ भागता रहा, अभी उनको कंट्रोल में लेना उसके लिए थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसलिए लोग कहते हैं भी मन जो है वो हवा की तरफ भागता रहता है, हाथी की सौंड की तरफ हिलता रहता है, उसको कंट्रोल करना बिल्कुल असंभव है। बाबा कहते हैं मन तो आपका है और मन आपके कंट्रोल में नहीं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है अपने कंट्रोल में। तो ये अभ्यास की बात है, आत्मा समझने के बाद बुद्धि और मन के बीच में क्या रिश्ता है इसको जानना जरूरी है। मन को कंट्रोल करने का प्रयास आपको करना नहीं है, तो क्या करना है, मन और बुद्धि का आपस में क्या रिलेशन है वो आपको जानना है। बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, बुद्धि मन का इंडिकेटर है, बुद्धि मन का मैनेजर है। जहां बुद्धि जाती है मन उसके पीछे पीछे पूंछ की तरह भागता है। इसलिए हमें बुद्धि को कंट्रोल करने पर ध्यान देना है, मन को कंट्रोल नहीं करना। जैसी माँ जाती है ना, वो पीछा छोटा बच्चा है ना, पल्लू पकड़ के मम्मी 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 करके भागता है मम्मी के पीछे, तो ऐसी जहां बुद्धि हमारी जाती है मन हमारा उसके पीछे ऑटोमेटिक जाता है और मन मनाभव का मंत्र का जाप करता है और वो योगाभ्यास में हमें बड़ी सरलता अनुभव होती है, समझा। तो इसलिए जैसा जैसा ये अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा, शक्ति आपकी मिलती जाएगी, बैटरी चार्ज होती जाएगी, फिर आपके जीवन का आनंद अनुभव होने लगेगा। जीवन के दो अर्थ हैं, जी प्लस वन, जीना हमारा वन नंबर का हो। दूसरा अर्थ है जीव प्लस न, जिसमें जीव ही नहीं है, जान ही नहीं है, बेजान ऐसा निष्क्रिय जीवन हमारा नहीं। भगवान की पालना हमें मिल रही है तो हमारा जीवन कैसा हो, श्रेष्ठ हो, ठीक है। अभी मैं एक छोटी सी बात आपको लास्ट में बताना चाहता हूं, बहुत महान आत्माएं पहुंची है यहां। आप बहुत बिजी होते हैं ना, बहुत बिजी होते हैं, तो एक छोटी सी बात पर ध्यान देखना। जब भी वॉच को आप देखते हैं, हैंड वॉच देखते हैं, टेबल वॉच देखते हैं, वॉल वॉच देखते हैं, तो पांच चीजें वॉच करना है आपको, डब्ल्यू ए टी सी एच। डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ड्स, मेरा हर बोल शॉर्ट स्वीट और बहुत स्लोली हो, सबको सुख देने वाला हो, प्रेरणा देने वाला हो, कभी भी किसी की खुशी छीनने वाला कड़वा बोल ना हो। W स्टैंड फॉर वर्ड। A फॉर एक्शन, मेरा हरेक कर्म बहुत श्रेष्ठ हो, महान हो, अनेक आत्माओं को प्रेरणा प्रदान करने वाला हो, ऐसा मेरा श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण नहीं हो। डब्ल्यू ए टी, टी फॉर थॉट्स, हर मन में जो भी संकल्प क्रिएट होता है वो बहुत पावरफुल हो, पॉजिटिव हो और शक्तिशाली भी हो अच्छी तरह से, क्योंकि जैसा मन, मेरा मन है, जैसा संकल्प मैं क्रिएट करना चाहूं कर सकता हूं। इसलिए हमेशा मन की जो पैदाश है, क्रिएशन है, पावरफुल थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स होना चाहिए। सी, सी फॉर कूलनेस एंड कैरेक्टर, कूलनेस कभी भी शीतलता को भंग होने नहीं देना है। शीतलता भंग होना ये कमजोर आत्मा की निशानी है। शीतलता को हर परिस्थिति में मेंटेन करना ये शक्तिशाली आत्मा की निशानी है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे अपने शीतलता को, कूलनेस को मेंटेन करना है। और सी फॉर कैरेक्टर, कोई भी मेरे तरफ ऐसी उंगली नहीं दिखा सकता है, किसी की ताकत नहीं है ऐसी उंगली मेरे तरफ दिखाएं। ऐसी उंगली कब दिखाता है कोई, जब मैं कोई ऊपर नीचे काम करूंगा, कुछ भूल करूंगा, तभी पॉइंट आउट करेगा। एक उंगली के बजाय पांच उंगलियां घूम जाए, यू वाह, आप तो गजब के हो भाई, ताली तो बजाओ जरा, यू वाह, पांच उंगलियां घूम जाए, ऐसा कैरेक्टर हमारा। एंड यच फॉर होलीनेस एंड हैप्पीनेस, खुशी जैसी खुराक नहीं, गमी जैसा रोग नहीं। खुशी की खुराक आत्मा को खूब खिलाना है, हर रोज बाबा को याद करना है, परमात्मा को याद करना है, योग का अभ्यास करना है, फिर आप देखना खुशी आपके जीवन का अंग बन जाएगी, खुशनुमा जीवन आपका बनता जाएगा। और होलीनेस प्यूरिटी, प्योरिटी के आधार पर ही हमारी वैल्यू होती है। परमात्मा कहते हैं प्यूरिटी हो तन में, मन में, धन में, इसमें सब में प्यूरिटी हो, मनसा वाचा कर्मणा में प्यूरिटी हो। तो ये पांचों चीजों को वॉच करते जाना है, वॉच करके चेक करो और चेंज करो। कभी भूल से किसी को उल्टा बोल दिया हमने, कोई बात नहीं, आगे के लिए संकल्प करना है, आगे मैंने ऐसा बोल मुख से नहीं निकालना है। क्योंकि योग की शक्ति करेंगे ना, तो वो शक्ति मदद करेगी आपको उस पर कंट्रोल करने के लिए, उस पर रूल करने के लिए, तो वो आपको मदद भी मिलेगी, समझा। तो ये पांचों चीजों को वॉच करते जाएंगे तो आपके जीवन में धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जाएगी। ओम शांति।